शाम को फोन आया था। ज्ञानी कॉफी पीते हुए कहा, डेट फाइनल हो गई है शादी की। निया और श्याम की शादी की हो रही थी। उनकी शादी की डेट भी इसी हफ्ते है, न्यारा ने कहा। ज्ञान मुस्कराया, अच्छी बात है, हम दोनों दोस्तों ने दो सगी बहनों से शादी की है। न्यारा हल्के से मुस्करा दी। कुछ पल चुप रहकर न्यारा ने पूछा, तो आप मुझसे शादी करके खुश हो? ज्ञान ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, इतनी खूबसूरत लड़की से शादी करके कौन खुश नहीं होगा। ज्ञान हंस पड़ा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी तो शादी कहीं और तय भी नहीं थी, और तुम मुझे अच्छे से जानती हो। फिर वो थोड़ा गंभीर हो गया, एक बात साफ साफ बता देता हूँ, मेरी लाइफ में कोई नहीं है, कभी कोई नहीं रहा। अब तुम मेरी पत्नी हो तो मुझे कोई जल्दी नहीं है, अगर तुम चाहो तो टाइम ले सकती हो, हम पहले दोस्तों की तरह रह सकते हैं, साथ में एक दूसरे को समझेंगे, फिर धीरे धीरे अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। वो मुस्कुराया और आंख दबाकर बोला, बस ज़्यादा टाइम मत लेना, मॉम डैड को पोते की बहुत ख्वाहिश है। न्यारा उसकी बात सुनकर शर्म से लाल हो गई, वो समझ नहीं पा रही थी कि हंसे या कुछ बोले। ज्ञान ने थककर करवट ली और बोला, अब सो जाओ, मैं बहुत थक गया हूँ। वो बेड पर लेट गया, फिर बिना उसकी तरफ देखे बोला, और हाँ, सोफे पर मत चली जाना फिल्मों की तरह, यहीं बेड पर सो जाओ। ये कहकर उसने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। न्यारा हल्की सी मुस्कान के साथ उसके पास आकर लेट गई। उसके दिल में अब भी हल्की सी झिझक थी, मगर साथ ही एक अजीब सी सुकून भरी खुशी भी। रात को फरीद खान घर आ चुका था। सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर वो रेहान से मिला। गुड मॉर्निंग डैड, कहते हुए रेहान कुर्सी पर बैठ गया। फरीद खान ने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा, रेहान तुमने वो मीटिंग क्यों डिले कर दी? रेहान ने प्लेट में पड़े टोस्ट को देखते हुए कहा, वो मीटिंग पोस्टपोन हो गई थी, मैं देखता हूँ, आज ही फिक्स कर दूंगा। इतने में रेहान के फ़ोन पर एक मैसेज आया। उसने स्क्रीन देखी और कुछ पल के लिए जैसे खोसा गया। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ रेहान, फरीद खान की आवाज़ थोड़ी सख्त हो गई। सॉरी डैड, रेहान ने फ़ोन नीचे रखते हुए कहा, एक ज़रूरी मैसेज था, वही देख रहा था। तभी रेहाना बेगम ने दोनों को टोक दिया, इतने दिनों बाद घर आए हैं आप, तो कम से कम चुपचाप नाश्ता तो कीजिए, बिजनेस की बातें इस टेबल पर नहीं होनी चाहिए। फरीद खान हल्का सा मुस्कुराए, फिर बोले, वैसे आज शाम को हमें जिब्रान साहब के यहाँ जाना है, उन्होंने रेहान की तरफ देखते हुए कहा, और मीटिंग उसी हिसाब से रखनी, मीटिंग का टाइम शादी के टाइम से क्लैश नहीं होना चाहिए। रेहान ने थोड़ा उदास होकर कहा, मैं सोच रहा था कि शादी में क्या करूँगा, शायद मीटिंग ही अटेंड कर लूँ। फरीद खान ने तुरंत कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो हमारे सबसे बड़े क्लाइंट हैं, वहाँ जाना ज़रूरी है। रेहान ने हल्की झुंझलाहट से कहा, एक्चुअली ऐसे इवेंट्स में मैं बोर हो जाता हूँ, असल में उसका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, उसके दिमाग में बस नूर ही छाई हुई थी और वही उसे परेशान कर रही थी। फरीद खान ने थोड़ा सोचकर कहा, तो फिर सादिया को साथ ले जाओ, मन भी लग जाएगा। उसी वक्त सादिया किचन से ट्रे लेकर आई, ट्रे में सबके लिए कॉफ़ी के कप रखे हुए थे। उसने चुपचाप ट्रे टेबल पर रख दी, लेकिन उसकी नज़रें अनजाने में रेहान पर ही टिक गई थीं। मुझे बता दीजिए कि आपको किस वक्त तक तैयार होना है, मैं भी उसी हिसाब से तैयार हो जाऊंगी। सादिया ने ये बात कही बिना ये देखे कि इस वक्त रेहान का चेहरा कैसा है और उसका मूड कैसा है। असल में इस समय उसका मूड बेहद उदास था। कुछ ही देर बाद फरीद खान अपनी कुर्सी से उठ गए। काफ़ी दिनों बाद वो वापस शहर आए थे, इसलिए उन्हें जल्दी ऑफिस भी जाना था। कोई अच्छा सा गिफ्ट देख लेना, रेहाना बेगम ने रेहान से कहा, आखिर वो हमारे सबसे ज़रूरी क्लाइंट हैं। तभी उसी वक्त नूर वहाँ आ गई। गुड मॉर्निंग, उसने हल्की मुस्कान के साथ सबको कहा। गुड मॉर्निंग, सादिया और रेहाना बेगम ने जवाब दिया, लेकिन रेहान चुप रहा, उसने नूर की तरफ देखा तक नहीं। कुछ पल की खामोशी के बाद रेहान बोला, मुझे तो लगता है कि गिफ्ट की जगह कैश दे देते हैं, एक ही बात है। उसने ये बात नूर की तरफ देखे बिना कही थी, जैसे वो बस रेहाना बेगम की बात का जवाब दे रहा हो। कोई बात नहीं, रेहाना बेगम ने सहजता से कहा, गिफ्ट मैं अरेंज कर लूंगी, तुम इस बात की फिक्र मत करो। इतने में उनकी नज़र टेबल पर रखी कॉफ़ी की ट्रे पर गई। ट्रे में कॉफ़ी के कप के साथ एक छोटा सा बॉक्स भी रखा था, बिल्कुल किसी लंच बॉक्स की तरह। ये क्या है? रेहाना बेगम ने सादिया से पूछा। सादिया तुरंत मुस्कुराई, ये नूर के लिए है, वो बोली। फिर उसने थोड़ा बनावटी अपनापन दिखाते हुए कहा, वो रोज़ सुबह बिना कुछ खाए पिए ही चली जाती है, अच्छे से खाती भी नहीं, मुझे लगा कि यूनिवर्सिटी में जाकर खा लेगी, इसलिए मैंने इसमें सैंडविच रख दिए हैं। सादिया ये बात कहते हुए दोनों माँ बेटे को ऐसे दिखा रही थी जैसे वो नूर की बहुत परवाह करती हो, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा था ये सिर्फ वही जानती थी, क्योंकि नूर के खिलाफ एक बहुत बड़ा खेल शुरू होने वाला था। थैंक यू भाभी, नूर ने हंसते हुए कहा, आप मेरी कितनी परवाह करती हैं, और इतनी जल्दी आपको मेरी आदतों का भी पता चल गया। नूर सचमुच खुश हो गई थी, उसे लगा कि सादिया उसकी कितनी केयर करती है। कोई बात नहीं, सादिया ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने नूर के चेहरे की तरफ गौर से देखा और उसके बाद एक नजर रेहान की तरफ डाली। लेकिन नूर, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? सादिया ने यह सवाल जानबूझकर किया था, क्योंकि रात को वो पहले ही रेहान को बता चुकी थी कि नूर कमरे में नहीं है। उसकी बात सुनकर रेहान का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उधर नूर थोड़ा घबरा गई थी। असल में रात को नूर और अरमान काफी देर तक छत पर बैठे रहे थे। हाँ, वे दोनों एक दूसरे के करीब थे, लेकिन नूर ने कभी भी अरमान को अपने हाथ पकड़ने से ज्यादा करीब नहीं आने दिया था। चाहे जो भी हो, उसकी अपने संस्कार और सीमाएं थीं और वो उन्हें कभी नहीं तोड़ सकती थी। हाँ, वो थोड़ी लापरवाह थी, थोड़ी जिद्दी भी, कभी कभी बिना सोचे बोल भी देती थी, लेकिन अपने किरदार और इज्जत के मामले में वो हमेशा बहुत सावधान रहती थी। नूर ने सादिया के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जवाब अचानक अरमान की तरफ से आया। उसी वक्त अरमान हॉल के अंदर आया और कुर्सी खींचकर बैठ गया। पूरी रात पड़ती रहती है, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। फिर नूर की तरफ देखते हुए बोला, इसलिए आंखें लाल हो गई होंगी, है ना नूर? रेहान गुस्से में चुप बैठा हुआ था। वो अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से काबू में किए हुए था। वहीं दूसरी तरफ सादिया हल्की मुस्कान के साथ सब कुछ देख रही थी। तो क्या तुम भी पढ़ रहे थे? सादिया ने जानबूझकर अरमान से पूछा। तुम्हारी आंखें भी तो लाल हैं। अरमान ने आराम से कुर्सी पर टेक लगाई। पढ़ नहीं रहा था, उसने सहज अंदाज में कहा। हाँ, नूर को जरूर पढ़ा देता हूँ, इसकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। फिर उसने रेहाना बेगम की तरफ देखते हुए कहा, ताई अम्मी ने ही कहा था। अरमान की बात सुनकर रेहाना बेगम हल्के से मुस्कुरा दी। ये तो बहुत अच्छी बात है, सादिया बोली। लेकिन नूर अब भी वहीं खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट और परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। तुम भी बैठ जाओ नूर, ऐसे क्यों खड़ी हो? रेहाना बेगम ने प्यार से कहा। नूर धीरे धीरे कुर्सी खींचकर बैठने ही वाली थी कि तभी रेहान की आवाज आई। इसे जाने दीजिए। उसकी आवाज ठंडी लेकिन सख्त थी। फैजान इसकी वेट कर रहा है, लेट हो जाएगी। रेहान ने नूर की तरफ देखे बिना ये बात कही, लेकिन उसकी आवाज में छिपी नाराजगी हर किसी को महसूस हो रही थी। नूर एक पल के लिए ठिठक गई और सादिया के होठों पर फिर से एक हल्की मुस्कान आ गई, जैसे वो वही यही चाहती थी। डोंट वरी, मैं छोड़ दूंगा, अरमान ने कहा। कोई बात नहीं, तुम नाश्ता करो, रेहान ने ठंडी आवाज में कहा। सादिया चुपचाप बैठी हुई थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो सब कुछ एंजॉय कर रही थी। रेहान गुस्से भरी नजरों से नूर की तरफ देख रहा था, जबकि नूर चुपचाप वहां से जाने लगी।
उम्मीद करती हूँ मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आ रही हो।